89 से लेकर 96 तक
शूटिंग का पीरियड मुद्दा हुआ है।
द्वापर युग की शूटिंग में मुख्य आत्माएं कौन सी दिखाई गई है चित्र में, जिनको विशेष पार्ट बजाना है? इब्राहिम, बुद्ध और क्राइस्ट। तो ये इब्राहिम, बुद्ध और क्राइस्ट हमारे ब्राह्मणों की दुनिया में कोई बीज रूप और आधारभूत आत्माएं हैं, जो विशेष रूप से प्रत्यक्ष होकर के अपने अपने धर्म की स्थापना और संवर्धन का विशेष पाठ बजाती और ये प्रत्यक्ष भी होती। इब्राहिम बुद्ध कहे कि कोई वो प्रत्यक्ष नहीं होंगे जो परम नाम से आने वाले। पहले तो ब्राह्मणों की दुनिया के जो आधार मूर्त और बीज रूप है उनके प्रत्यक्ष होने की बात, क्योंकि जब तक धर्म पिताएं प्रत्यक्ष न हो तब तक उनकी सार्वत प्रजा को संदेश नहीं मिल सकता। तो इस तरह 96 तक का पीरियड, जब तक पूरी राजधानी स्थापन होने का समय है, बाबा ने बोला है पूरी राजधानी स्थापन होने में 7 साल का समय लगता है, 7 साल में तुम्हारी पूरी राजधानी स्थापन हो जा रही। तो 7 साल का ये समय पूरा होता है तब 96 में राजधानी स्थापन होना माना जितने भी राजा रानियों का परिवार है, रॉयल फैमिली है, पुणे 108
कोई मास्टर भी अंदर है सजादे मास्टर,
प्रत्यक्ष हो जाएंगी, संगठित हो जाएंगी। और स्थापना का जब ये कार्य पूरा हो जाता है, राजधानी स्थापन होने का, तो बाबा ने बोला है स्थापना होगी और विनाश शुरू होगा। जब तक पूरी स्थापना नहीं हुई है तब तक विनाश नहीं हो सकता। रिहर्सल होती है वो बात दूसरी है, बच्चों के पुरुषार्थ को तीव्र करने के लिए बीच बीच में रिहर्सल होती रहेगी, लेकिन टोटल विनाश नहीं होगा। टोटल विनाश, लड़ाई झगड़ा, मारा मारी, खून खराबा जो दुनिया में होगा, भारतवर्ष में भी खास होगा, वो तो सब होगा जबकि कलह कलेश वाले युग की, कलयुग की शूटिंग होगी। इसलिए भारतीय परंपरा में महाभारी महाभारत युद्ध और उससे होने वाली स्थापना द्वापर युग में दिखाई हुई, क्योंकि सन 88-89 में जो सेकेंडरी ब्रह्मा है दादा लेखराज, उनकी एज भी 100 साल पूरी हो जाती है। ब्रह्मा की आयु मृत्यु लोक में खत्म हो जाएगी। तो जब ब्रह्मा की 100 साल आयु पूरी होगी तो उसका नया जन्म, नया दिव्य जन्म प्रत्यक्ष होना चाहिए। जो बाबा ने बोला है कृष्ण जब जन्म लेता है तो बिजली की कौंध जाती है। बिजली कौंधना माने एक बार के लिए प्रकाश हो जाना और फिर अंधेरा हो जाना, अंधेरों की दुनिया में एकाएक पिंडली बिजली कौन जाए, सेंटर के सेंटर से टूट जाए, प्रकाश ही प्रकाश हो जाए, चकाचौंध हो जाए और फिर अंधेरा,
अंधेरों की दुनिया।
तो ये कृष्ण के जन्म की सूचना बताई बाबा ने। 88-89 का जो पीरियड है वो द्वापरयुग की शूटिंग की शुरुआत का पीरियड है। शास्त्रों में इसीलिए कृष्ण को कहाँ डाल दिया, द्वापरयुग। प्रश्न द्वापर युग में नहीं आया, लेकिन कृष्ण की आत्मा ने दिव्य जन्म लेने का जो विशेष कारक बजाया है वो द्वापर के आदि में बजाया, और जो महावाणी महाभारत युद्ध कराने का जो विशेष कारक बजाया है वो भी द्वापर की शूटिंग में विशेष बजाया। इसीलिए शास्त्रों ने कृष्ण को द्वापर में ठोक दिया। उसी संगम की कृष्ण की यादगार शास्त्रों में है, सत्युग में जन्म लेने वाले कृष्ण की यादगार कोई शास्त्रों में नहीं होगी, न है। तो 96 के बाद कलयुग की शूटिंग शुरू होती है, लड़ाई झगड़ा मारामारी, और उस समय में बड़ी तीव्र गति से दुनिया की आत्माओं को संदेश भी मिलेगा, परमात्मा भी तीव्र गति से प्रत्यक्ष होगा, और जो दुनियावी धर्म पिता है जो परम धाम के द्वापर कलयुग में उतरते हैं वो भी प्रत्यक्ष होने लग पड़ेंगे, और चारों ओर दुनिया में ज्ञान की ही ज्ञान की लहर हो जाएगी। उत्तर पश्चिम पूरा दक्षिण चारों दिशाओं में जैसे काल बन रहा है, लेकिन ज्ञान का जोर शोर भी बढ़ता चला जाएगा, और 2000 में सारी दुनिया को संदेश मिलने के बाद सारी दुनिया की मनुष्य मात्र आत्माओं को परमात्मा गॉड फादर का रियलाइजेशन होने के बाद 5-7 रोज में एटम बमों के धमाके होंगे, और चतुर्थ विश्व युद्ध के साथ ही इस दुनिया का खात्मा हो जाएगा। 500-600 करोड़ मनुष्य आत्मा है, और कीड़े मकोड़े पशु पक्षियों की भी आत्मा है, सब अपने अपने शरीर छोड़ करके परम धाम वासी बन जाएंगे। कुछ विशेष आत्माएं रहेंगी इस सत्यमुक्ति रंगमंच पर, जिन्होंने योग बल से अपनी श्वास क्रिया को सूक्ष्म कर लिया होगा, जिनके ऊपर एटमिक वातावरण का कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि उनकी श्वास प्रश्वास क्रिया इतनी धीमी होगी कि उन्हें विशेष गहरी श्वास लेने की दरकार ही नहीं पड़ेगी। उस समय एटमिक धमाकों से उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पर जो पहाड़ जमे हुए हैं बर्फ के वो पिघल जाएंगे, और उनके पिघलने से समुद्र का स्तर ऊपर चढ़ जाएगा, जिसका अंजाम ये होगा कि रूस, अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया जैसे महाद्वीप जो आज से 2500 वर्ष पहले जिनका नाम निशान भी मनुष्य के मस्तिष्क पटल पर नहीं था, जैसे अमेरिका 500 वर्ष पहले मनुष्य जानता ही नहीं था कि अमेरिका खंड कहाँ है या नहीं, आज से 300 वर्ष पहले ऑस्ट्रेलिया का पता ही नहीं, ऐसे ही और धर्म खंड जितने भी हैं, अरब खंड, मुस्लिम खंड या क्रिश्चियन खंड, ये भी समुद्र के गर्त में आज से 2000 साल पहले समय हुए थे। तो ये विनाशी धर्मखंड जो न थे और न एटमिक धमाकों के साथ इस दुनिया में रहेंगे, समुद्र के गर्त में समा जाएंगे, एक अविनाशी खंड भारत ही रहेगा, और चारों तरफ दुनिया में समुद्र ही समुद्र होगा। एटमिक धमाकों से जो दुनिया का वातावरण गर्म होगा उससे बर्फ पिघल करके समुद्र का स्तर तो ऊपर चढ़ेगा ही, लेकिन वातावरण की गर्मी से वो भाप बनकर पानी ऊपर उड़ेगा, समुद्र का पानी भाप, क्या कहते हैं अंग्रेजी में, बादल बनकर बचेंगे, स्टीम बनेगी, और मूसलाधार कई दिन तक बरसात होगी,
पानी रुकेगा ही नहीं। एटमिक धमाकों से सबसे बड़ा विनाश होगा भूकंप के द्वारा। जब पृथ्वी हिलेगी तो मकान सब गिर जाएंगे और मनुष्य सब दब करके मर जाएंगे। अपने अपने पापों की सजाएं भोगते रहें। किसी की टांग दबेगी तो किसी की बाह दबेगी और कोई निकालने वाला होगा नहीं। तड़पते तड़पते ही हलाक हो जाए। तो 2000 साल पूरा होने के बाद या 2000 साल के आस पास ये विनाश होने के बाद जो 4.5 लाख मनुष्य आत्माएं नई शक्ति को जन्म देने वाली बीज रूप आत्माएं बचेंगी, जिनमें आधी शंकर जैसी आत्माएं और आधी पार्वती जैसी आत्माएं, आधी सात आत्माओं की नित्य वाली दुर्योधन जो शासन की वृत्ति वाली और आदि पुण्य आत्माओं की नित्य वाली आत्माएं दुनिया के हिसाब से कहा। बाकी वो कोई पुण्यात्मा पापात्मा नहीं है, वो बचेंगे। जैसा बाबा ने मुरली में बोला है, जब विनाश होगा तो आधे पुण्यात्मा आधे पापात्मा बचेंगे। इसका मतलब जो पापात्मा बचेंगे उनको फिर पुरुषार्थ करना है। उनके संग के रहेंगे थे फिर वो भी संघ में आते रहेंगे। पाप आत्माओं के संग में जब वो आएंगे तो वो भी कैसे बनेंगे? कुछ न कुछ संघ का रंग तो लगेगा ना। तो एक होते हैं पाप आत्मा ओरिजिनल और एक होते हैं संघ के रंग से बने हुए प्रभावित होने वाले। तो रानियां कैसी होती है? राजाओं से प्रभावित होने वाली है। तो जो भी बचेंगे 2000 के बाद जो परम धाम से उनकी आत्माएं वापस आएंगी और अपने शरीरों में प्रवेश करेंगी, कोई प्रश्न कर सकता है उनके शरीर कैसे बच जाएंगे? तो उसका हिसाब है कि जब मूसलाधार कई दिन तक बरसात होगी तो दुनिया का वातावरण कैसा हो जाएगा? ठंडा हो जाएगा। चारों तरफ दुनिया में बर्फ ही बर्फ जम जाएगी और उस बर्फ में जो बीज रूप आत्माएं हैं याद की अवस्था में बहुत तीव्र वो याद की स्टेज में अपना शरीर छोड़ देंगे। इसलिए उन योगियों के जो शरीर हैं वो नेचुरल प्राकृतिक ऐसे साधन बनेंगे कि वो बर्फ में कोल्ड स्टोरेज में दब जाएंगे। उनके शरीर सुरक्षित रहेंगे और वो तब तक सुरक्षित रहेंगे जब तक परम धाम से उनके नंबर पर उनकी आत्माएं उस शरीर में प्रवेश न कर जाएंगे। नई सृष्टि की शुरुआत होगी। जो बीज रूप आत्माएं हैं वो फिर से आत्म की स्टेज में अपनी तपस्या शुरू करेंगे। उस समय शिव बाबा की याद नहीं होगी, ज्ञान नहीं रहेगा, ज्ञान सब भूल जाएगा। आज की दुनिया में भी कोई ऐसा एक्सीडेंट कभी हो जाता है कि जिसके मस्तिष्क में अगर चोट लग जाए कोई ऐसी तो वो पुरानी बातें सारी भूल जाता है।
तो कितने काम तक
है
वास्तव में कितने काम तक रहता है
क्या
वो आधार होता है ना? आप
मूसलाधार बढ़ता आपको थोड़े दिन होगी। अरे 4 घंटे पानी लगातार बरस जाता है तो उसको ट्राय ट्राय करने लग पड़ते हैं लोग। तो सप्ताह की बात है, सप्ताह दो सप्ताह की। लेकिन जो वातावरण ठंडा हो जाएगा उसमें जो बर्फ जमेगी वो लंबे समय तक जमी रहेगी। दुनिया के बहुत से इलाकों में तो बर्फों तक जमी रहेगी और उस तो बर्फ में उनके शरीर सुरक्षित रहेंगे। ये तब तक रहेंगे बहुतों के शरीर जब तक राधा कृष्ण जैसे बच्चों का जन्म होना शुरू नहीं होगा। क्या? क्योंकि आत्माएं तो ऊपर से नीचे उतरती ही रहेंगी। पहले तो बीज रूप आत्माओं में आत्माओं का प्रवेश होगा। जो शरीर नीचे पड़े हुए हैं उनमें हम सोच का प्रवेश होगा। प्राकृतिक रूप से वो स्थान की बात हटेगी टाइम आने पर और वो आत्माएं विचरण करेंगे, धीरे धीरे सब इकट्ठे हो जाएंगे। क्योंकि ये बीज रूप आत्मा तो सारे विश्व के सब धर्मों के बीज है। कयामत के समय में विनाश के पीरियड में 2000 से पहले इनको सारी दुनिया में फैल जाना पड़ेगा। जो जिस धर्म खंड का धर्म की ये बीज रूप आत्मा होगी उसको उसी धर्म खंड में जाना पड़ेगा। मान लो कोई एकदम लैक्टिक धर्म का है तो जरूर वो विपरीत बुद्धि बनने वाली बीज रूप आत्मा भी होगी। बाप से विपरीत बुद्धि भी जरूर बनेगी क्योंकि वो बीज है। बीज में वो क्वालिटी होगी जो दूसरे धर्मों की क्वालिटी होती है। दे अभिमान का चिंता जरूर चढ़ा हुआ होगा। तो वो आत्माएं जो विपरीत बुद्धि बनती है तो सतगुरु निंदक और न पाव। ऐसी सदगुरु की निंदा कराने वाली वो बीज रूप बाप के बच्चे कयामत के समय में दूर देशों में फेंके जाएंगे ईश्वरीय सेवा करने के लिए, जहां विनाश का तांडव नृत्य हो रहा होगा। और वहां रहकर भी अपने श्रद्धा परमात्मा के विश्वास के आधार पर वो आत्मा विदेशों में विदेशी धर्मसंघों में सेवा करते हुए संदेश देते हुए भी परमात्मा बाप की याद में रहेगी और एहसास करेंगी, पश्चाताप करेंगी कि हमने पहचान कर नजदीक रहकर भी और बाकी ज्ञानी के हम निमित्त बन गए। इस तरह पश्चाताप की अग्नि में जल करके वो अपने सारे पापों को स्वाह कर लेते। लेकिन सारे विश्व में बिखरी हुई वो आत्माएं उनको इकट्ठा होने में टाइम को बाद में जरूर लगेगा। तो वो 18 वर्ष का पीरियड संभव 2000 से लेकर 2018 तक। जैसे 18 वर्ष का पीरियड यहां भी महत्वपूर्ण है, 69 से लेकर और 89 तक, 87 ये 18 वर्ष का पीरियड हुआ ना। 69 में बाबा ने शरीर छोड़ा था, अब देख हुए थे तो ये अर्धक पांच कितने साल चला, 18 साल चला। तो 18 वर्ष जैसे यहां कार्यकाल चला वैसे 18 वर्ष वहां भी मुझे हुए। ये 18 वर्ष जो ऑटोमेटिक बस्ती चलेगी, ऑटोमेटिक का मतलब कोई हाथ प्रयत्न नहीं करना पड़ेगा क्योंकि वहां ज्ञान का सब्जेक्ट समाप्त हुआ पड़ा होगा, योग का सब्जेक्ट फिर से रह जाएगा। तो ज्ञान का सब्जेक्ट खत्म। ज्ञान क्या है? परमात्मा को परिचय, आत्मा को परिचय, रचयिता और रचना को परिचय, वो ज्ञान
योग में भी
तो वो समाप्त। योग माने आपकी किसकी अंतमति तो गति किसकी और उस समय सेवा करने की दरकार भी क्योंकि विरोधी आत्मा दुनिया में है ही नहीं जिनकी सेवा करे। और धारणा करने के लिए कोई विशेष पुरुषार्थ करना नहीं पड़ेगा। धारणा करने का पुरुषार्थ हमको तब तक करना पड़ रहा है जब तक विरोधी आत्माओं के संसर्ग संपर्क और संग में हमको आना पड़ता है। अगर हम बाप के संग में ही लगातार बने रहे तो दुनियावी लोगों का संग करेंगे कैसे लगे। लेकिन जब तक विनाश नहीं होगा तब तक दुनिया में 500 करोड़ों से आत्माओं का हुजूम है, उनका वातावरण है, वायुमंडल है, इसलिए हमको संसार संपर्क में जाना पड़ेगा। तो वो वायुमंडल वहां नहीं होगा, इसलिए धारणा करने की भी जरूरत नहीं, ऑटोमेटिक धारणा भी होगी। तो 18 वर्ष की योग भक्ति में सबसे पहले जो युगल अपना शरीर रूपी काया को यानी पांच तत्वों को कंचन बनाने में सफल होगा, यानी शंकर पार्वती, वो ही राधा कृष्ण जैसे बच्चों को उस समय जन्म देने के लिए खुला। तो 18 वर्ष वो और 18 दूनी 36 फिर वही 2036 आ जाता है। उस समय तक राधा कृष्ण की आत्माएं 18-20 साल की हो जाने, क्या 18-20 साल जब उनको हो जाएंगे उस समय उनको राज रद्दी सौंप दी जाएगी, एक्यूरेट सत्यु की शुरुआत हो जाएगी। उस समय 4.5 लाख और बच्चों का भी जन्म हो चुका होगा, किनसे उन्हीं बीज रूप आत्माओं के जिन्होंने योग बल से अपनी काया को कंचन बना ली। तो इस तरह 9 लाख आबादी से सत्यु की शुरुआत हो जाए। तो ये सत्य चक्र के 4 जो युग हैं उनकी शूटिंग और उसके बाद का हिसाब किताब है। इसमें दूसरी बात भी है, इस चक्र का दूसरा प्रकरण है एडवांस ज्ञान में कि हर युग अपने शूटिंग काल में 4 अवस्थाओं से गुजरता है। क्या 4 अवस्थाओं से गुजरना माने सतो प्रधान सतो सामान्य रजो और तमो, माने एक कल्प की आवृत्ति एक युग की शूटिंग में गुजरी हुई है। क्या जैसे सतयुग तो लेते हैं मिसाल के तौर पर, तो कराची में जो टीजर था एकदम शुद्ध सतो प्रधान पहले जन्म का टेम्पल था, सतो प्रधान टूटी हुई वह, क्योंकि एक बाप का साकार संग था, दुनिया वाले किसी भी समो प्रधान मनुष्य का चेहरा भी देखने को नहीं मिलता था। तो दिल किसके लगा रहे मुरली में बाबा ने पूछा, जब किसी को देखते ही नहीं थे तो दिल किससे लगा लेंगे, एक बाप से तो अवस्था कैसी बनेगी, अब व्यभिचारी या व्यभिचारी सतो प्रधान बनेगी ना, तो सतो प्रधान अब व्यभिचारी वहां स्टेज रहती है उस टूटिंग पीरियड। उसके बाद सतो सामान्य स्टेज भी होती है, और वो सतो सामान्य स्टेज तब तक सब शुरू होती है जब सेवा की फील्ड पर बच्चों को उतारा जाता है। तो सेवा की फील्ड पर बच्चे उतरे तो जरूर ऊपर नीचे होंगे, उस समय बाबा ने तो बच्चों को डायरेक्शन दे दिया था अपनी अवस्था को जमाए रखने के लिए, क्या डायरेक्शन दिया था किसी को मालूम है, उस समय डायरेक्शन दिया था ये बना जाए को डायरेक्शन दिया था, गो सून कम सून, ईश्वरीय सेवा के लिए जल्दी जल्दी जाओ और जल्दी जल्दी वापस आओ। तो जिन बच्चों ने उसके डायरेक्शन पर अमल किया, देखिए अवस्था थोड़ी खराब होती थी बाबा के पास दौड़ के आ जाते, उनकी अवस्था बाबा के संग के रंग में आने से बीच बीच में कवर होती है, और जिन लोग जो बच्चे अनिश्चय बुद्धि हो गए बहुत ही दुनिया में रंग की रहेगी उनकी अवस्था दिन प्रतिदिन डाउन होती चली गई। तो सतो सामान्य स्टेज बनी जो बच्चे बाबा के पास आते रहे बीच बीच में क्योंकि लगातार का संग तो नहीं रहा था। तो ये स्टेज रही है तब तक जब तक मम्मा बाबा जीवित रहे। मम्मा थी एटीसी कंट्रोलर शासन करता यथा राजा तथा प्रजा। और ब्रह्मा बाबा ने तो परमात्मा शिव की सोल गॉड फादर की थी। तो जैसा संग वैसा रंग जिन बच्चों ने लिया शासन उस समय तक सतो सामान्य स्टेज रही। त्रेताई भी चीजें हुई उसके बाद मम्मा बाबा ने जब शरीर खो दिया तो साकार संग समाप्त हो गया। और परमात्मा का जब साकार संग समाप्त हुआ तो अधूरे ब्राह्मणों का संग रह गया और समोपदान दुनियावानों का संग रह गया। तो अवस्था कैसी बनेगी रजो प्रधान। तो रजो प्रधान द्वापर युग की शूटिंग शुरू हो गई। द्वापर जब शुरू होता है तो तेजी से जनसंख्या बढ़ती है जिले जो ये कि मेरी कैसे हुआ लंदन का पहला सेवा केंद्र कौन है किसकी नई है जो सब विदेशों का हेड ऑफिस बाबा के शरीर छोड़ने के बाद क्योंकि द्वापर युग से ही रजो प्रधान स्टेज से ही दुनिया की आबादी भी तीव्र गति से बढ़ती है। दूसरे दूसरे धर्म की आत्माएं सत्ता में आने लग पड़ती है। तो ब्राह्मणों की यज्ञ में भी ऐसे ही ये क्रम चलता रहा 73 तक। और 73 के बाद पतन का एक बड़ा आकार फिर से शुरू हो गया। पतन का घर बन गया क्या मेला। भगवान का मेलों में मेला इकट्ठा होता है। सच्चा मेला है आत्मा और परमात्मा का प्रैक्टिकल मेला। अब परमात्मा तो प्रैक्टिकल में था नहीं तो आत्माओं के जो मेले हुए उनमें ढेर की ढेर समो प्रधान की आत्माओं ने प्रवेश करना और ब्रह्मा कुमार कुमारियों के संसर्ग संपर्क में आना शुरू कर दिया। जब लाखों की तादाद में व्यक्ति व्यक्ति सरप्टिड वाले व्यक्ति ब्रह्मा कुमार कुमारियों के संसर्ग संपर्क और दृष्टि के बीच आने लगे तो अवस्था कैसी बनेगी कहाँ तक कवर करेंगे समो प्रधान स्टेज बनेंगे। इसलिए बाबा कहते हैं संग जैसा संग वैसा रंग। संग दोष और सन्न दोष ये बहुत बड़े दोष। तो 73 से लेकर के 76 तक ब्राह्मणों की दुनिया में समो प्रधान कलयुग की स्थापना होगी। ये सतयुग एक युग की शूटिंग के अंदर ही चार अवस्थाएं पसार हो गई जैसे कि एक कल्प की आवृत्ति हो गई। 5000 वर्ष में जितना ड्रामा हूबहू रिपीट होता है वैसे ही हूबहू रिपीटेशन इन 40 वर्षों में होता है। 40 वर्ष पहले जो जो कार्यकलाप यज्ञ के अंदर हुए थे वही 40 वर्ष के बाद वही क्रियाकलाप 76 से लेकर के 89 तक भी चलते रहते। यानी त्रेता युग की शूटिंग भी चार अवस्थाओं के प्रकार होती है। दिल्ली से एडवांस पार्टी की शुरुआत होती है जब एडवांस पार्टी की बीजों का आत्माओं पर विशेष कार्य है राजधानी की स्थापना करना। ब्रह्मा और ब्राह्मणों के द्वारा ब्रह्म धर्म की स्थापना और एडवांस पार्टी की बीजों का आत्माओं के द्वारा राजा बनने वाली आत्माओं के द्वारा राजधानी की स्थापना। स्वर्गीय संगठन की स्थापना की शुरुआत, बल थोड़ी आत्माओं के द्वारा ये संगठन शुरू होगा। जैसा बाबा ने बोला, एक और दो मिलकर के बाहर हो जा रही है। एक भी पावरफुल ग्रुप, 12 का ग्रुप, 12 × 9 कितना हुआ? 108। एक भी पावरफुल संगठन तैयार होने पर एक दूसरे ग्रुप को खींचते हुए अंत में 108 का माना का संगठन प्रकट हो जाएगा। तो पहले तो एक ग्रुप तैयार होगा ना, ब्रह्मा देवी से आत्माओं पर। तो टेटाई की शूटिंग में भी ये चार अवस्थाएं होती है। एडवांस पार्टी की भी रूप आत्माओं तत्व प्रधान स्टेज भी होती है 78 तक, 78-79 से लेकर के 80-81 तक तो सामान्य स्टेज बनती है। और 80-81 में जो दिल्ली में एडवांस सोसाइटी का घर तैयार होता है, वो सारा घर रजो प्रधान स्टेज शुरू होने के कारण गर्त हो जाता है, क्योंकि परमात्मा बाप गुप्त हो जाता है ब्राह्मणों से, ब्राह्मणों की आंखों से। एडवांस पार्टी की बीज रूप आत्माओं के दृष्टि से ओझल हो जाता। ब्रह्मा की रात्रि की शुरुआत हो जाती। 81 से लेकर के 88-89 तक का ये पीरियड द्वापर युग की शूटिंग यानी रजो प्रधान और तमो प्रधान का अनुभव हुआ। तो त्रेता युग की शूटिंग में भी चार अवस्थाएं हो गई, सतो प्रधान, सतो सामान्य, रजू और तम। ऐसे ही द्वापरों की शूटिंग की भी चार अवस्थाएं, सतो प्रधान, सतो सामान्य, रजू और तमो। 96 तक तमो प्रधान अवस्था भी पूरी हो जाएगी वैश्यवर्ण की आत्माओं की। इसके बाद शूद्रवर्ण की आत्माओं की भी चार अवस्थाएं होंगी। इस तरह ये चार युगों की सूचना समाप्त होने पर बुद्धि का पूरा परिवर्तन हो जाएगा। मन बुद्धि की आत्मा का परिवर्तन होने के बाद फिर शरीरों का परिवर्तन, अर्थात 5 तत्वों से बने शरीर का परिवर्तन शुरू होगा। उसकी भी चार आवृत्तियां होंगी। जैसे सर्प का मिसाल दिया था, 3-4 बार शरीर क्या करता है फिर सर्प मर जाता है। शक्ति चक्र के चित्र में एडवांस प्रणाली का तीसरा पॉइंट जो अभी थोड़ा इशारा दिया वो ये है कि ब्रह्मा का दिन शक्ति चक्र के चित्र में बेसिक नाली के बतौर कार्ड में बताया जाता है कि ये स्वच्छता की चार भुजाओं का एक चक्र है जो चार युगों में बांटा हुआ है। चार भुजाएं चार युगों को सूचित करती है, 12.5 वर्ष 12.5 वर्ष। जिसमें 2 भुजाएं राइट हैंड की ओर और 2 भुजाएं लेफ्ट हैंड की ओर। राइट हैंड की 2 भुजाएं सत्य व त्रेता स्वर्ग की सूचक हैं और लेफ्ट हैंड की 2 भुजाएं द्वापर कलयुग नरक की सूचक है। नरक के बाद स्वर्ग और स्वर्ग के बाद नरक, ये 2500 वर्ष के बाद परिवर्तन होता रहता है। लेकिन नरक की दुनिया को स्वर्ग बनाने के लिए बीच में है संगम, जो कोटा का तीर के द्वारा दिखाया गया। ये 150 वर्ष का संगम युग है जिसमें कलयुग को बदलकर सतयुग की स्थापना की जाती है। और ये 5000 वर्ष का चक्र ज्यों का त्यों घूमता है। लेकिन इसे बेसिक नॉलेज को लेकर मूल्यों की जब गहराई में उतरा जाता है तो ढेर सारी नई नई बातें निकलती है, जिसके बाबा कहते हैं सुदर्शन चक्र घुमाओ। ये चार युगों का चक्र है, इसमें हमारी आत्मा कैसे चक्र लगाती है, यह है स्व आत्मा का 84 के चक्र का दर्शन। तो मुरलियों की गहराई में जाने से, मनन चिंतन मंथन में जाने से ढेर ऐसी बातें निकलती है जिससे शास्त्रों का सारा ज्ञान क्लियर हो जाता है। बाबा ने मुरली में बताया हुआ है कि जैसे ड्रामा होता है वो तो हद के ड्रामा होते हैं, और ये है तुम्हारा बेहद का ड्रामा 5000 वर्ष का, और ये 5000 वर्ष का ड्रामा इसकी शूटिंग होती है कब? संगम में। तो संगम युग में इसकी शूटिंग का पीरियड भी निश्चित होगा। संगम की आयु ज्यादा में ज्यादा मुरलियों में 100 साल बताई गई है, और कम से कम 40 साल भी बताई गई है। बाकी कहीं 50 साल, कहीं 50-60 साल, इस तरह 3-4 तरीके से बाबा ने मुरलियों में बताया ही है। तो इसमें मुझने की कोई बात नहीं है, मुरलियों के प्रसंग के अनुसार बाबा ने जहाँ 40 साल बताया हुआ वो भी ठीक, और जहाँ 100 साल बताया वो भी ठीक। क्या युग है तो वो जैसे 4-3 है ड्रामा के, और प्रत्येक युग की शूटिंग का समय भी संगम युग में लुधा हुआ होना चाहिए। ऐसे नहीं सारे लोगों की शूटिंग एक साथ हो जाएगी, जरूर पहले सत्युग की शूटिंग होगी। जैसे कोई मकान बनाते हैं तो पहली मंजिल बनाने में टाइम ज्यादा लग जाता है, साथ सामान इकट्ठा करने में। ऐसे ही पहला युग है सत्युग, उसका फाउंडेशन डालने के लिए लंबा समय चाहिए। शास्त्रों में भी सत्युग की आयु कलयुग से 4 गुनी, त्रेता की 3 गुनी, द्वापर की कलयुग से 2 गुनी दिखाई गई। ऐसे तो शास्त्रों में 12.5 वर्ष का ही कलयुग बताया गया है, लेकिन शास्त्रकारों ने उसे दैवीय दिव्य वर्षों से गुणा करके उसको लाखों वर्ष का बना दिया। जबकि बाबा कहते हैं देवताओं का कोई अलग दिन नहीं होता है, न कोई अलग वर्ष होता है, न कोई अलग मास होता है, दिन वर्ष मास तो यही होते। तो सत्युग की शूटिंग के लिए अगर उसमें संगम युग भी शामिल कर लिया जाए आरंभ कर, तो कुल टोटल 40 वर्ष का समय सामान्य तौर पर। लेकिन शुरुआत का अगर संगम का समय निकाल दिया जाए और एक्यूरेट सत्युग की जो स्थापना का सैंपल कराची में दिखाया गया, जिसे हम 21 जन्मों में से पहले जन्म का सैंपल कहें, तो फुल टोटल आयु निकाली जाती है सन 36-37 से लेकर के 50 तक की, लेकिन सन 50 के बाद भी ईश्वरीय सेवा की दृष्टि से कोई वृद्धि विशेष नहीं हो पाई, क्योंकि शूटिंग का सारा हिसाब है और ड्रामा का नाटक का सारा हिसाब बनता है परम धाम रूपी घर से एक्ट्रेस रूपी आत्माएं जो सृष्टि रूपी रंगमंच पर उतरती हैं और उनकी संख्या जब बढ़ती है तो उससे कनेक्टेड है। संगम युग में जब तक विनाश न हो जाए दुनिया का और जब तक नई जनरेशन की शुरुआत न हो और नई जनरेशन यथा स्थान पर सेट न हो जाए तब तक एक्यूरेट सृष्टि की शुरुआत नहीं मानी जाती, और जब एक्यूरेट सृष्टि की शुरुआत होती है तो परम धाम के अंत में उतरने लगती तीव्र गति से। तो वो ही हिसाब यहाँ सूचित दी गई है। राजपाश्चार्वत के परम धाम रूपी घर से आत्माएं उतरती और शूटिंग पीरियड में आत्मा से अज्ञान की दुनिया से कब्र से कब्र दाखिल होने से ज्ञान की स्टेज में जागती है, अर्थात ज्ञान में उनका आना होता है जैसे जागृत अवस्था में आना होता है, जैसे परम धाम में आत्मा सुसुप्त पड़ी हुई उस सत्य रूपी रंगमंच पर आकर के जागृत हो जाती है, ऐसे ही इस सत्य रूपी रंगमंच पर कलयुग के अंत में सब आत्माएं जैसे सोई हुई पड़ी है अज्ञान निद्रा, परमात्मा आकर के उनको कब्र दाखिल से जगाती है संदेश देकर ज्ञान का, तो वो ज्ञान का संदेश जो तीव्रता से फैलाया गया वो तब से फैलाया गया जब से चित्र बन गए और चित्रों के द्वारा सर्वित होने लगे। तो वो चित्र वास्तव में एक के अंदर बने हैं सात एक तत्व, त्रिमूर्ति गोला और झार का चित्र, इससे पहले भी इनका प्रारूप बुद्धि में आ चुका था लेकिन इनका कंप्लीट रूप जो गीता साथ छपाई गई है सबसे पहले एक पुस्तक मुनियों का सार रूप उसमें ये तीनों चित्र छापे गए और बाबा ने हजारों की तादाद में फोल्डर छपाए थे जिन फोल्डर को लेकर सर्विस करने का कार्य मैदान में शुरू हुआ। उस समय से जैसे के ज्ञान की दुनिया में आत्माओं की जनसंख्या तेजी से बढ़ने लगी और सती भी शूटिंग तेज हो गई, तो सन 61 से लेकर के और 76 तक के 16 वर्षों में संदेश देने की सेवा के हिसाब से अथवा संदेश लेने की सेवा के हिसाब से ज्ञान यज्ञ में आत्माओं की वृद्धि शुरू हुई। बाकी क्रांति से जितने आए थे सर्विस फील्ड में जब उनको भेजा गया तो उनको ये उनमें से बहुतों को यह अनिश्चय पैदा हो गया कि अब तो बाबा के पास कुछ नहीं रहा और बहुत से ब्रह्मावर्त के यज्ञ में से टूट गए जनसंख्या क्षीण हो गई तो बजाय सर्विस वृद्धि को पाने के और ही डाउन हो गई। फिर बाद में जब धीरे धीरे हालत सुधरी तो सर्विस तीव्रता होती गई। तो 61 से लेकर के 73 तक का जो पीरियड है वो सेवा के क्षेत्र में तीव्र गति लाने का। जब तक इंडिया आता है क्योंकि 73 में ब्रह्मा की 100 साल आयु पूरी हो जाती है। आज ब्रह्म अर्थात जिसने परमात्मा शिव ने पहले प्रवेश किया, त्रिमूर्ति के चित्र में बताया था कि परमात्मा शिव ने पहले प्रवेश किया प्रजापिता ब्रह्मा। ब्रह्मा ने तो बाद में प्रवेश किया, काशी से मुरली निकलती चली आई है ऐसा मुरली में बोला। तो जब से काशी से मुरली निकली तब से ब्रह्मा में प्रवेशता साबित होती है। उससे पहले बाबा कोई और बच्चों में मुरली चलाते थे प्रवेश। तो वो आदि ब्रह्मा 36-37 में 60 ईयर्स ओल्ड होना चाहिए और 60 ईयर्स में 40 ईयर्स और ऐड किए तो 100 ईयर्स पूरे होते हैं। जो आदि ब्रह्मा की आयु 76 में पूरी हो जाती ब्रह्मा मृत्यु लोक में समाप्त हो जाता है। ब्रह्मा की आयु मृत्यु लोक में पूरी होती तो वो आत्मा जो है मन बुद्धि की छेद से प्रत्यक्षता रूपी दिव्य जन्म लेने के हिसाब से अपने पार्ट के प्रत्यक्ष होने के हिसाब से 76 में नया जन्म धारण कर ली थी। जैसा कि कल लक्ष्मीनारायण के चित्र में बताया था कि लक्ष्मीनारायण का जन्म कब हुआ, बाबा ने पूछा, आज से 10 वर्ष कम 5000 वर्ष हुए। संख्यात्मक की वाणी के अनुसार 76 आता तो ये 61 से लेकर के सेवा के हिसाब से 76 तक का जो पीरियड है वो विशेष संदेश देने का पीरियड और उसमें सती की सूचन करने वाली जितनी भी आत्माएं थी जिनकी की संख्या सतयुग के आदि में 9 लाख और सतयुग के अंत में 2 करोड़ बाबा ने बताई थी। 73 की जो ज्ञानामृत मैगजीन छपी है उसमें सब तक का पूरा सर्विस का कोटा मेल दिया गया है, जिसमें बताया गया कि अब तक 1 करोड़ विश्व की आत्माओं को संदेश दिया जा चुका है। तो जैसे विश्व की अनसमाप्त आत्माएं हुई 500 करोड़ में से 1 करोड़ तो हिसाब ठीक था। 73 से बड़े बड़े मेले लगने शुरू हुए तो बड़े बड़े मेलों में लाखों आत्माओं को एक साथ संदेश दिया जाने लगा, एक ही एक मेले। और हर महीने किसी न किसी भारत के बड़े शहर में वो मेलों का आयोजन होने लगा। तो 73-74 से लेकर के 76 तक और 100 लाख अर्थात 1 करोड़ आत्माओं को संदेश मिलना कोई बड़ी बात नहीं है। इस तरह सतयुग की 2 करोड़ मनुष्य आत्माओं को 76 तक ज्ञान का संदेश मिलने का ड्रामा की नूढ़ अथवा शूटिंग का कार्य पूरा हो जाता है। इसके बाद त्रेताई की शूटिंग शुरू होती है। जैसा कि चित्र में दिखाया गया है सतयुग की शूटिंग में बुखिया कौन दिखाई गई, प्रतिनिधित्व करने वाली आत्माएं कौन सी दिखाई गई है? राजसी की आत्मा तो हम जानते हैं, ये वही पीरियड है सती की शूटिंग का, जिसमें राधा कृष्ण की आत्माएं अर्थात मम्मा बाबा की आत्माएं ब्राह्मण बच्चों के दिलो दिमाग में सर्वोपरि होकर रहती, हीरो हीरोइन के रूप में पार्ट बजाती, तो वो सती की शूटिंग के निमित्त हो गए। उसके बाद देताई की शूटिंग का कार्यकाल शुरू होता है, तो जैसा चित्र में दिखाया गया है त्रेतायुग की सेकंड सीन में मुखिया कौन दिखाए गए? राम सीता वाली आत्मा। तो जरूर त्रेतायुग की शूटिंग में प्रतिनिधित्व के रूप में, प्रतिनिधि के रूप में राम सीता वाली आत्मा रंगमंच पर ब्राह्मणों की दुनिया के बीच आनी चाहिए। तो वैसा ही हुआ, राधा कृष्ण वाली आत्मा अगर ब्राह्मणों की दुनिया स्थापन करने के निमित्त बनती, नई दुनिया ब्राह्मणों की बनाती है, तो ये तो स्थापना का कार्य संपन्न हुआ। लेकिन जब तक कचरे का विनाश न हो तब तक स्थापना का कोई मूल्य नहीं होता। तो ब्राह्मणों की पुरानी दुनिया जिसमें अनेक प्रकार के ब्राह्मण इकट्ठे हो गए, रावण कुंभकर्ण जैसे ब्राह्मण भी इकट्ठे हुए, तो वशिष्ठ और विश्वामित्र जैसे कोशार्थी ब्राह्मण भी इकट्ठे हुए, तो उनमें से श्रेष्ठ वर्ग को एक और करने के लिए, शॉर्टिंग करने के लिए और दुष्ट वर्ग का सफाया करने के लिए शंकर का पार्ट भी चाहिए। जैसे कृष्ण की चोल त्रिमूर्ति में ब्रह्मा का पार्ट बजाती है, वैसे ही राम की आत्मा त्रिमूर्ति में शंकर का पार्ट धारण करने वाली है। इस बात का प्रूफ त्रिमूर्ति के चित्र में, जो हिंदी का चित्र है उसमें विष्णु के नीचे की लिखत इस बात का प्रूफ है। इसमें चार भुजाओं का क्लेरिफिकेशन दिया हुआ है, चार भुजाएं माने विष्णु की रूप भुजाओं के रूप में चार परमात्मा के मददगार, उसमें चार नाम दिए हुए, लक्ष्मी नारायण और राम सीता। जो विष्णु चतुर्भुज में चार भुजाएं दिखाई गई हैं, दो भुजाएं ब्रह्मा की ओर और दो भुजाएं शंकर की ओर, तो दो भुजाएं हैं ब्राह्मण धर्म की स्थापना की सूचक ब्रह्मा और सरस्वती, और दो भुजाएं हैं राम और सीता वाली जो संगमी की दुनिया में चार टीम का काम करती है, कचरे का सफाया कर देती, ताकि श्रेष्ठ आत्माएं जो कि नई दुनिया के वारिसदार बनने वाले हैं उनको स्थान मिल सके। तो त्रेतायुग की शूटिंग सेक्टर से जो शुरू होती है उसका हिसाब यही है कि सेक्टर से 10 साल पहले बाबा ने मुरली में घोषणा कराई थी कि 10 वर्ष में पुरानी दुनिया का विनाश अर्थात ब्राह्मणों की पुरानी दुनिया का विनाश होता है, किसके द्वारा? शंकर के द्वारा। तो जिसके द्वारा विनाश होता है वो विनाश की निमित्त बनी हुई आत्मा भी कोई न कोई होनी चाहिए, तो वह है राम वाली सोच, जिसके लिए अव्यक्तवाणी में बाबा ने बोला हुआ था विनाश वाला तब प्रसिद्ध हुई कौन निमित्त बने, तो जवाब दिया यज्ञ के आदि में स्थापना के कुंड से, ज्ञान यज्ञ कुंड से स्थापना के साथ साथ विनाश वाला भी प्रसिद्ध हुई,
ब्रह्मा बाप और ब्राह्मण पद के निमित्त बने, तो जो विनाश ज्वाला को प्रज्वलित करने के निमित्त बने हैं उन्हीं को विनाश ज्वाला संपन्न भी करनी है भविष्य में। वही आत्माएं जो यज्ञ के आदि में निमित्त बनी थी, ब्रह्मा की सोल, ब्राह्मण बच्चों की आत्माएं और ब्रह्मा बाप अर्थात प्रजापिता की सोल, राम वाली आत्मा जिसके लिए मुझे बोला राम खेल हो गया यज्ञ, वही आत्मा जो कि किसी नयन में ब्रह्मा बाबा के शरीर छोड़ने के बाद यज्ञ में आ जाती है, 76 तक अपना पुरुषार्थ परिपक्व स्टेज में पहुंचा लेती और 76 में प्रत्यक्ष हो जाती, जैसे ब्राह्मण की दुनिया में ब्रह्मा सरस्वती प्रतिनिधित्व के रूप में थे, वैसे ही ब्राह्मणों की नई दुनिया अर्थात एडवांस पार्टी की दुनिया, उसमें ब्राह्मण बच्चों के बीच वो राम सीता वाली आत्माएं अर्थात शंकर पार्वती के रूप में प्रत्यक्ष होने वाली आत्माएं प्रतिनिधित्व के रूप में पाठ बजाती, क्योंकि उन बच्चों के दिल और दिमाग पर वो बच्चे विशेष आए हुए रहते, जैसे ब्रह्मा सरस्वती 76 तक ब्राह्मण बच्चों के दिल और दिमाग पर छाए रहे। तो त्रेता युग की शूटिंग में राम सीता वाली आत्माएं निमित्त बनती है, विशेष 76 से लेकर के 89 तक का 12 वर्ष का इनका पीरियड त्रेता युग की शूटिंग कराने का निमित्त दुधा हुआ है। यहाँ भी हिसाब वही संदेश देने का, क्योंकि त्रेता अंश की आबादी बाबा ने बताई है 5-10 करोड़ आबादी नहीं होती त्रेता के अंत तक, अगर त्रेता के अंत तक 37 करोड़ आबादी हो जाए, 12 जन्मों में 2 करोड़ से बढ़कर 37 करोड़ हो जाए, 16 गुनी बढ़ जाए, तो द्वापर के अंत में तो और ज्यादा गुनी बढ़ेगी ना, तो कितनी आबादी हो जाएगी, और फिर कलयुग के अंत में कितनी आबादी हो जाएगी। तो ऐसा नहीं कि त्रेता के अंत में ही 37 करोड़ देवात्माएं परम धाम से नीचे उतर आती, नहीं, 5-10 करोड़ का हिसाब बाबा ने बताया, एक्यूरेट नहीं बताया, 5-10 करोड़ के बीच में ही होंगे, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। जितने ब्राह्मणों को 2 करोड़ ब्राह्मणों को 76 का संदेश मिलता है, वो संदेश देने वाले बन जाते, तो मल्टीप्लाई होता रहता है, संदेश का मल्टीप्लिकेशन होता रहता है, इसलिए अगले 12 वर्षों से लेकर के 88-89 तक और 8 करोड़ मनुष्य आत्माओं को मेले सम्मेलन बड़े बड़े जो प्रोग्राम होते रहे उनमें संदेश मिलना कोई बड़ी बात नहीं। अब प्रश्न ये होता है कि वहां तो ब्रह्मा सरस्वती वाली आत्माएं और ब्राह्मण आत्माएं निमित्त बनी संदेश देने की, यहाँ तो एडवांस पार्टी की आत्माएं दिखाई भी नहीं पड़ती, तो जो कनेक्शन में आने वाले हैं आने वाले हैं वो ही जानते हैं, और वो एडवांस पार्टी वाली आत्माएं को कोई मेले सम्मेलन और जो आयोजन प्रदर्शनियां वगैरह होती हैं उसमें कोई लिखेंगे हिस्सा भी नहीं लेते, देखेंगे वो कहां से निमित्त बन गई, अथवा उनके प्रतिनिधित्व करने वाली आत्मा राम सीता कहां से निमित्त बन गए सिया का संदेश देने के लिए, त्रेता की आबादी उनके लिए आंक ली गई, उसका हिसाब यह है कि गारंटी से पूरे जब दुनिया का विनाश नहीं हुआ तो ब्राह्मण बच्चों को बाबा की जी के और बाबा के ज्ञान की नित्य जैसे उखड़ जाता है। वो ब्राह्मण परिवार के जो सरपरस्त हैं वो सेवा भाव के लिए नहीं करते कि उन्हें कोई निश्चय है ईश्वरीय कार्य को, बल्कि वो तो सेवा इसलिए करते हैं कि उनकी बुद्धि में अच्छी तरह बैठ जाता है सरपरस्तों की बुद्धि में, मीडियाओं की बुद्धि में एक दूसरी नई पार्टी कोई निकल चुकी है जिसका मुकाबला हम ज्ञान और भोग में नहीं कर सकते। भोग के बड़े से बड़े प्रोग्राम आल इंडिया लेवल पर ही नहीं लेकिन अंतर्राष्ट्रीय प्रोग्राम स्तर के भी आप एडवांस पार्टी वाली आत्माओं अथवा उनके शब्दों में शंकर पार्टी कही जाती है। हालांकि बाबा के तो तीनों बच्चे हैं बराबर ब्रह्मा विष्णु शंकर कृष्ण भाई भाई जैसे ही, लेकिन उन्होंने पार्टी बाजी बना दी है तो शंकर पार्टी के नाम पर उन्होंने भय से ग्रस्त होकर जितने भी अंतर्राष्ट्रीय प्रोग्राम योग्य रखे उनके उस पार्टी को कोई बांध बांटा वो नहीं सका। अप एंड डाउन में आना बड़ी बात नहीं, ये तो यज्ञ आरंभ से ही अप एंड डाउन में आता रहा, भैया डूलेगी लेकिन डूबेगी नहीं। आप करके बाबा ने आज नहीं कहा था ओम मंडली के लिए, दुनिया वाले कहते हैं ओम मंडली गई की गई, ओम मंडली का मतलब यह आ माने ब्रह्मा ऊ माने विष्णु मा माने मेरे, यानी ब्रह्मा विष्णु शंकर की मंडली। जैसे संगीत मंडली होती है ना, कोई हारमोनियम बजाता है कोई तबला बजाता है कोई तारनी बजाता है, तो दो चार मिलकर के वो मंडली बन जाती है। ऐसे ही ये तीन आत्माओं की विशेष मंडली है और ये मंडली इतनी सशक्त है कि जैसे आज में दुनिया वाले कहते थे कि वो मंडली गई की गई, जो आज में हुआ वही अंत में होता है, अंत में ब्राह्मणों की दुनिया के अंदर जो अनिश्चय वाले ब्राह्मण है, अनिश्चय बुद्धि विलक्षण की होने वाले ब्राह्मण है वो भी यही कहने लगते हैं कि ये मंडली गई की गई, क्योंकि ब्रह्मा की बातों पर तो उन्हें विश्वास रहता नहीं, वो सिर्फ दिखाने के लिए दिखावा के लिए बुद्धि करते हैं, जैसे दूसरे ब्राह्मण सिर्फ पैसा कमाने के लिए गीता पाठ करते हैं, ताकि इस लोगों की गहराई में जाने की जरूरत नहीं समझते। ऐसे ही मुनियों के महावाक्यों की गहराई पकड़ने की कोई कोशिश नहीं करता, अगर वो जाता भी है तो मैं प्यारे गहराई में जाने की कोशिश। इस तरह जो संदेश है वो 10 करोड़ आत्माओं को अकाशी नवासी तक राम सीता वाली आत्माएं जो निमित्त बनती है और उनके साथ जो एडवांस पार्टी निमित्त बनती है उससे भयग्रस्त होकर वो ईश्वरीय सेवा के बड़े बड़े प्रोग्राम रखते हैं ताकि लोगों का बुद्धि का जो डायवर्सन है वो दूसरी पार्टी को उठने चला जाए। वरना तो जिनको निश्चय उभर चुका वो इसी सेवा के प्रोग्राम क्यों करेंगे, उन्हें यही पता नहीं है कि ईश्वर की स्थापना कब होगी, पुरानी दुनिया का विनाश कब होगा, उनके पास कोई डाटा ही नहीं, जिनके पास कोई लक्ष्य ही नहीं है जीवन का ब्रह्म जीवन का, दूसरों को लक्षण कैसे दिखाएंगे, वो तो सिर्फ अपने पेट पीड़ा के लिए धंधा चलाते हैं। इससे दुनिया को संदेश भयग्रस्त होकर के मिलता है
वास्तव में उनकी अपनी इच्छा नहीं है संदेश देने की, लेकिन मजबूरी है। वो दुनिया को तो पहले ही छोड़ चुके, अब इस दुनिया को छोड़ करके जाएंगे तो और हंसुराई जाएंगे, इसलिए बेचारे बंधन में। तो संदेश देने के बंधन में होने के कारण वो कैसे ब्राह्मण होंगे? उस कारण कुछ माने सबका सबका परे वाले ब्राह्मण, उनको सबका लग रहा है कोई विशेष आत्मा पर, जिसके आधार पर वो धक्के से प्रभावित होकर के दूसरी आत्माओं को दुनिया की आत्माओं को संदेश दे रहे। अपने मन की दिल की शिक्षक शिक्षक नहीं, तो एक इसको पहुंचा संदेश देने का राम सीता वाली आत्माओं को, शंकर पार्वती जैसी आत्माओं को, हेमंत पाई के दूसरी आत्माओं को संदेश मिल सकती। इसके बाद कोई व्यक्ति के लिए 12 वर्ष का एक आई डी सुना हुआ है, एक आई डी सी मिलता उसका हिसाब है मुकर्रर किया गया है। उसका मूल कारण है कि बाबा ने बोला है 50 से 60 वर्ष लगते हैं पूरी राजधानी स्थापन होने, तुम बच्चों को समोप्रधान से सतोप्रधान बनने में 40 से 50 वर्ष, 50-60 वर्ष भी बोला है लग जाते हैं। ये ज्ञान यज्ञ चलता ही है 50 वर्ष, उसके बाद पढ़ाई के बाद फिर होती है लड़ाई, महामारी महाभारत युद्ध का समय, और लड़ाई जब पूरी हो तब होती है राजाई। तो ये तीनों का टाइम मुद्दा हुआ। पढ़ाई 50 वर्ष की कौन से समय पूरी होती है? ये पीरियड 50 वर्ष का पूरा हुआ, एक वर्ष रोम में दे दिया ना, इसलिए 88-89 ये पीरियड जो है वो 50-51 साल का। भक्ति मार्ग में भी कभी 50 रुपए नहीं दान करेंगे,